आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0-1 एक गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्राबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्राबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सदर प्राबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वजीर आजम ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला 2 तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के 3 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद शफाफ टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इसलाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की सदसाला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक एक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि यह वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की सहूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटा बेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों की 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद दियोगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAACने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाबता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी माहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्ज़ाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की جانب سے نیک تمنائیں پیش کیں اور بحرین میں مقیم بھارتی برادری کی سلامتی، تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین میں مقیم بھارتی برادری کے افراد سے ملاقات بھی کی۔ اپنے اس دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر مذکورہ چار خلیجی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور اعلی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے اور علاقائی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مہاراشٹر کے ساحلی اور گھاٹ کے علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پالگھر، رائے گڑھ، ناسک اور پونے کے گھاٹ علاقوں کے لیے آج ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب ممبئی سمیت ساحلی اضلاع اور شمالی مہاراشٹر کے کئی علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں بعض مقامات پر اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر انتظامیہ نے احتیاطی اقدامات کیے ہیں، جبکہ این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
مہاراشٹر کے گھاٹ کے علاقوں میں انتہائی شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں لوناوالا میں 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ مٹی کے تودے کھسکنے کے خطرے کے باعث کئی سڑکوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے، جبکہ متعدد سیاحتی مقامات کو احتیاطاً بند کر دیا گیا ہے۔ ناسک ضلع میں بادل پھٹنے جیسی بارش کی پیش گوئی کے بعد انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ممبئی، تھانے، نوی ممبئی، پالگھر، رائے گڑھ، رتنا گیری اور ناسک، ستارہ اور پونے کے حساس گھاٹ علاقوں میں آج اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ گزشتہ روز ممبئی سمیت کئی ساحلی ضلعوں میں 100 سے 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی۔ ممبئی سے سنگیتا گوڈبولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ملک کے شمال مشرق کے بعض علاقوں، اڈیشا، پنجاب اور اتر پردیش میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ بھارت کے پہلوانوں نے تھائی لینڈ کے شہر پاٹایا میں ہوئے 20 سال کی عمر تک کے ایشیائی ریسلنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پہلوانوں نے مجموعی طور پر 20 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 4 طلائی، 7 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ بھارت نے مختلف وزن کے زمروں میں مسلسل عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کی کشتی اور مردوں کے فری اسٹائل دونوں زمرے کے ٹیم مقابلوں میں ٹاپ 3 میں جگہ بنائی۔ فٹ بال میں اسپین نے کل رات ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول میکیل میرینو نے دوسرے ہاف کے پہلے منٹ میں کیا۔ ادھر پرتگال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے پری کوارٹر فائنل سے باہر ہو جانے کے بعد اگلے فیفا ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں گے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے دورے پر جکارتا پہنچے، صدر پرابوو سوبیانتو نے کیا استقبال۔ اسی خبر کو روزنامہ انقلاب اور دیگر اخبارات نے بھی اپنے صفحہ اول پر پیش کیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے معاملے میں این آئی اے کی ضمنی چارج شیٹ میں حافظ سعید ملزم قرار، اس خبر کو بیشتر اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ لکھتا ہے مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں پر 24 جولائی کو ہوگا ضمنی انتخاب۔ فیفا عالمی کپ میں ناروے نے 5 بار کی چیمپئن برازیل کو 2-1 سے شکست دے کر پہلی بار کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس بات چیت کا مقصد بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی رفتار دینا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران امداد باہمی کی وزارت نے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ افراد کی زندگی میں نئی توانائی پیدا کی ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مظاہرین نے پاکستان کی حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو 9 جولائی کو حتمی اور فیصلہ کن احتجاج کیا جائے گا۔ اور بھارت نے پاٹایا میں منعقدہ 20 سال تک کی عمر کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 4 تمغوں سمیت 20 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔